एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हजारों साल पीछे ले जाता है, कांस्य युग में, एक बहुत ही मशहूर कहानी की जड़ों तक।
हाँ, वो कहानी जिसने पता नहीं कितनी किताबों, फिल्मों और कला को प्रेरित किया है, ट्रोजन युद्ध।
वही, क्या हेलन के लिए लड़ा गया वो महायुद्ध, 10 साल की घेराबंदी, वो बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा, क्या ये सब सच था? ये सवाल आज भी है।
और इसी गुत्थे को सुलझाने की कोशिश करती है एरिक एच क्लाइन की किताब द ट्रोजन वॉर, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। और देखिए, ये सवाल सिर्फ इतिहासकारों या पुरातत्वविदों के लिए ही नहीं है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अतीत को कैसे याद रखते हैं, कहानियां कैसे बनती हैं, सच क्या है, मिथक क्या है।
बिल्कुल, और ये समझना तो आज भी उतना ही जरूरी है ना, जब हम हर रोज इतनी सारी सूचनाओं और कहानियों से घिरे रहते हैं।
सही बात है।
तो आज की इस चर्चा में हम क्लाइन के नजरिए से देखेंगे कि इस कहानी के पीछे के सबूत क्या कहते हैं। मतलब हम तीन मुख्य धागों को पकड़कर चलेंगे।
कौन कौन से?
पहला, होमर की कविताएं, मतलब साहित्यिक स्रोत। दूसरा, जमीन की खुदाई से मिले सबूत, खासकर तुर्की के उस हिसारलिक वाली जगह से।
हाँ, हिसारलिक।
और तीसरा, उस जमाने के दूसरे साम्राज्यों के रिकॉर्ड्स, जिनमें वो हित्ती साम्राज्य के दस्तावेज सबसे अहम है।
अच्छा, तो ये तीन पिलर हो गए, साहित्य, पुरातत्व और हित्ती टेक्स्ट्स। और हमारे गाइड है एरिक एच क्लाइन।
जी,
वो कोई मतलब साधारण इतिहासकार नहीं है। वो अमेरिका के जॉर्ज वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, एक जाने माने पुरातत्वविद और कांस्य युग के विशेषज्ञ।
हाँ, और खास बात यह है कि वो उस खास दौर के माहिर हैं, कांस्य युग, एजियन और प्राचीन निकट पूर्व।
बिल्कुल ठीक वही समय और जगह जहां ट्रोजन युद्ध की कहानी सेट है।
सही कहा। क्लाइन की खासियत यही है कि वो सिर्फ एक एंगल से नहीं देखते, वो पुरातत्व, इतिहास और प्राचीन साहित्य तीनों की समझ को एक साथ लाते हैं।
मतलब एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच।
हाँ बिल्कुल, इससे उन्हें इस मुश्किल पहेली के अलग अलग टुकड़ों को जोड़ने में मदद मिलती है। उनकी एक और मशहूर किताब है ना, 1177 BC, द ईयर सिविलाइजेशन कोलैप्स्ड।
हाँ, वो भी काफी पॉपुलर हुई थी। वो मुश्किल एकेडमिक चीजों को भी दिलचस्प बना देते हैं आम लोगों के लिए।
और वही खूबी इस किताब में भी है, वो एकेडमिक बहसों को कहानी की तरह बताते हैं। वो ये नहीं पूछते कि क्या होमर ने जो लिखा वो शब्दशः सच है,
क्योंकि उसका जवाब शायद नहीं है।
हाँ, बल्कि वो पूछते हैं कि उस दौर की कौन सी असली घटनाएं या हालात थे जिन्होंने होमर जैसी कहानियों को जन्म दिया होगा। एक ज्यादा गहरा सवाल है ये।
तो किताब का सार क्या निकलता है फिर?
क्लाइन का मानना है कि होमर की इलियड, वो 10 साल का युद्ध, देवताओं का रोल, अकिलीस की वीरता, हेक्टर का बलिदान, ये सब एक साहित्यिक रचना है, इतिहास का रिकॉर्ड नहीं।
मतलब एक रानी के अपहरण के लिए इतना बड़ा युद्ध, शायद वो कल्पना ही है।
हाँ शायद।
लेकिन
क्लाइन ये भी कहते हैं कि ये कल्पना शायद हवा में नहीं बनी, इसके पीछे कोई ठोस ऐतिहासिक जमीन हो सकती है।
अच्छा।
हाँ, वो तीनों तरह के सबूतों को, होमर की कविता, ट्रॉय की खुदाई और हित्ती रिकॉर्ड, एक साथ रखते हैं और वो दिखाते हैं कि कैसे ये अलग अलग स्रोत एक ही दिशा में इशारा करते हैं।
किस दिशा में?
एक असली ताकतवर शहर ट्रॉय, जिसे हित्ती शायद विलुसा कहते थे, और पश्चिम से आए ताकतवर हमलावरों, माइसिनियन यूनानी, जिन्हें हित्ती अहयावा कहते थे, के बीच किसी तरह के टकराव की तरफ।
ओ, तो निष्कर्ष ये है कि ट्रोजन युद्ध की कहानी शायद एक सम्मिश्रित स्मृति है, मतलब कॉम्पोजिट मेमोरी। हाँ बिल्कुल, यानी कई अलग अलग लड़ाइयों, हमलों, राजनीतिक खींचतान की यादें जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक कविताओं के जरिए चलती रहीं और आखिरकार होमर के महाकाव्य में एक बड़ा भव्य रूप ले लिया।
जैसे कई छोटी नदियां मिलके एक बड़ी नदी बन जाती हैं, कुछ वैसा।
हाँ, कुछ वैसा ही। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं क्लाइन इन सबूतों की परतें कैसे खोलते हैं।
ठीक है।
किताब की शुरुआत में ही वो मंच तैयार कर देते हैं, मिथक बनाम इतिहास की ये पुरानी बहस। वो अपने तीन स्तंभों, साहित्यिक, पुरातात्विक और हित्ती ग्रंथ का परिचय देते हैं। और साथ ही ये भी साफ कर देते हैं कि हर स्रोत की अपनी सीमाएं हैं। होमर की कविता सदियों बाद लिखी गई, पुरातत्व तो मूक होता है, वो बोलता नहीं, और हित्ती रिकॉर्ड अपने नजरिए से लिखे गए हैं।
सही बात है। तो लक्ष्य है इन अलग अलग आवाजों के बीच कोई तालमेल खोजना।
बिल्कुल। अध्याय 2 फिर साहित्यिक सबूतों पर आता है, यानी होमर के महाकाव्य, खासकर इलियड।
हाँ, इलियड।
सबसे पहली और जरूरी बात, ये कविताएं घटना के करीब 400-500 साल बाद 8वीं सदी ईसा पूर्व में लिखी गईं।
इतना लंबा गैप।
हाँ, और जैसा कि मिलमिन पेरी और एल्बर्ट लॉर्ड जैसे विद्वानों ने दिखाया, ये किसी एक कवि की दिमागी उपज नहीं थी, बल्कि एक लंबी मौखिक परंपरा का हिस्सा थी। इन्हें गाया बजाया जाता था, याद करके सुनाया जाता था,
और इस प्रक्रिया में ये बदलती भी रहती होंगे।
जरूर। नतीजा ये हुआ कि कविताओं में कई ऐसी चीजों का जिक्र है जो होमर के जमाने की हैं, कांस्य युग की नहीं, जिन्हें काल भ्रम या एनाक्रोनिज्म्स कहते हैं।
जैसे?
जैसे लोहे के हथियार या कुछ खास तरह की सैनिक फॉर्मेशन। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनमें कांस्य युग की कुछ असली यादें भी दबी हुई लगती हैं।
अच्छा,
जैसे वो जहाजों की सूची,
कैटलॉग ऑफ शिप्स।
हाँ बिल्कुल सही, उसमें उन शहरों और नायकों के नाम हैं जो होमर के समय में शायद गुमनाम हो चुके थे, पर कांस्य युग में अहम रहे होंगे। ये एक तरह की सांस्कृतिक स्मृति है जो कहीं ना कहीं बची रह गई।
तो होमर को इतिहास की किताब मानना तो मतलब गलत होगा। ये शानदार कविता है, कला है,
पर शायद इसमें उस गुजरे हुए वीर युग की कोई धुंधली सी परछाई मौजूद है।
अब सवाल ये कि क्या जमीन के नीचे भी कुछ मिला? यहीं से अध्याय 3 की कहानी शुरू होती है और एंट्री होती है हेनरिक श्लीमन की।
हाँ, श्लीमन एक जर्मन कारोबारी जिन्हें होमर की कहानियों पर इतना यकीन था,
जुनून की हद तक।
बिल्कुल। 1870 के दशक में वो तुर्की पहुंचे और हिसारलिक नाम के टीले पर खुदाई शुरू कर दी। उन्हें पक्का यकीन था कि यही होमर का ट्रॉय है।
क्लाइन उन्हें एक जुनूनी सपने देखने वाला इंसान बताते हैं।
उन्होंने सही जगह तो पहचान ली।
हाँ, जगह सही पकड़ी, लेकिन अफसोस वैज्ञानिक तरीकों की कमी और शायद थोड़ी जल्दबाजी में उन्होंने ऊपर की कई परतों को खोद डाला,
जिनमें शायद वो असली होमरिक ट्रॉय भी रहा हो जिसका वो सपना देख रहे थे।
हो सकता है। और उन्होंने वो प्रियम का खजाना खोजने का दावा भी किया, जो बाद में पता चला कि वो ट्रॉय के समय से भी हजारों साल पुराना था।
जी हाँ, श्लीमन के बाद आए विलहेम डॉरफेल्ट और कार्ल ब्लेगन जैसे ज्यादा संधे हुए पुरातत्वविद। डॉरफेल्ट ने शहर के 9 स्तरों की पहचान की।
9 लेवल्स।
हाँ, और भव्य दीवारों वाले 6ठे स्तर ट्रॉय VI को होमर का शहर माना। लेकिन ब्लेगन ने 1930 के दशक में खुदाई करके कहा कि नहीं, 7वां स्तर ट्रॉय VIA ज्यादा मुमकिन है।
क्यों? VI के क्यों?
क्योंकि वो बुरी तरह जला हुआ और नष्ट मिला है, जैसे किसी युद्ध में होता है।
ओह।
और हाल के दशकों में मैनफ्रेड कॉर्फमान ने तो और भी काम किया।
हाँ, उन्होंने आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया, जैसे मैग्नेटोमेट्री, जिससे जमीन के नीचे बिना खोदे ढांचों का पता चल जाता है।
अच्छा, उससे क्या पता चला?
उससे पता चला कि ट्रॉय सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि एक काफी बड़ा शहर था, जिसके चारों ओर एक निचला शहर भी बसा था। मतलब ये एक अहम क्षेत्रीय ताकत रहा होगा।
तो अध्याय 4 इन्हीं पुरातात्विक सबूतों का विश्लेषण करता है, खासकर 2 मुख्य दावेदारों पर, ट्रॉय VI और VIA। हाँ, ट्रॉय VI करीब 1750-1300 ईसा पूर्व की दीवारें वाकई शानदार थीं। ऊंची, मोटी, होमर के मजबूत दीवारों वाले ट्रॉय जैसा शहर अमीर और ताकतवर लगता है।
लेकिन इसका विनाश?
विनाश का कारण शायद युद्ध नहीं, बल्कि एक जबरदस्त भूकंप था।
ओह, तो फिर ट्रॉय 7A करीब 1380-1180 ईसा पूर्व?
वो शहर उतना भव्य नहीं लगता। घर छोटे और सटे हुए हैं, जैसे आबादी बढ़ गई हो या लोग बाहर से आकर बस गए हों।
और वो मटकों वाली बात?
हाँ, घरों के अंदर जमीन में बड़े बड़े मटके, स्टोरेज जार्स गड़े मिले हैं, मानो लोग अनाज जमा कर रहे हों, शायद किसी घेराबंदी की तैयारी में।
और सबसे अहम बात, इस शहर का अंत
भयंकर आग और हिंसा से हुआ, यहाँ तक कि कुछ कंकाल और तीरों के फल भी मिले हैं। ये तस्वीर होमर की लड़ाई से ज्यादा मेल खाती है।
तो क्या हुआ होगा? 2 अलग अलग शहर, अलग अलग अंत।
क्लाइन एक दिलचस्प संभावना जताते हैं, शायद लोगों की यादों में ट्रॉय VI की शानो शौकत और ट्रॉय 7A का हिंसक अंत, ये दोनों बातें घुल मिल गईं और इसी से होमर की कहानी का आधार बना।
मतलब पुरातत्व हमें सही जगह, हिसारलिक, सही समय, कांस्य युग का अंत और विनाश का तरीका, आग, हिंसा तो बताता है।
हाँ, पर ये नहीं बताता कि हमलावर कौन थे और क्यों आए थे।
इस सवाल का जवाब हमें कहीं और खोजना होगा।
और यही कहानी में वो तीसरा और शायद सबसे निर्णायक मोड़ आता है, अध्याय 5, हित्ती साम्राज्य के लिखित दस्तावेज।
हित्ती, ये कांस्य युग में अनातोलिया आज का तुर्की की बड़ी महाशक्ति थे, है ना?
बिल्कुल, मिस्र और मेसोपोटामिया के बराबर, और खुशकिस्मती से उनके हजारों मिट्टी के टैबलेट्स मिले हैं
जिन पर वो किलाक्षर लिपि क्यूनिफॉर्म लिखते थे।
हाँ, उनकी संधियां, पत्र व्यवहार, राजाओं के कारनामे सब दर्ज हैं। और इन टैबलेट्स में क्या मिला? दो नाम जो बिजली की तरह कौंधे।
कौन से नाम?
पहला विलुसा। हित्ती रिकॉर्ड्स में उत्तर पश्चिमी अनातोलिया में एक राज्य का जिक्र है जिसका नाम विलुसा था। भाषाविदों का मानना है कि ये नाम ग्रीक नाम विलियोस, इलियोस से जुड़ा है,
जो इलियम यानी ट्रॉय का ही दूसरा नाम है।
वाओ, हाँ, और दूसरा नाम अहियावा।
अच्छा।
हित्ती रिकॉर्ड्स में पश्चिम में शायद समुद्र पार एक ताकतवर राज्य का बार बार जिक्र आता है जिसे वो अहियावा कहते थे।
और अहियावा कौन थे?
आज ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि ये अहियावा कोई और नहीं बल्कि माइसिनियन यूनानी थे, यानी होमर के अकियंस या ग्रीक योद्धा।
कमाल है, ये तो मतलब एक बाहरी समकालीन गवाह मिल गया, हित्ती दस्तावेज।
बिल्कुल, क्लाइन कुछ खास दस्तावेजों का जिक्र करते हैं जैसे अलकसंधु संधि। ये हित्ती सम्राट और विलुसा के राजा अलकसंधु के बीच हुई एक संधि है।
अलकसंधु, ये नाम होमर के किरदार पेरिस, जिसका दूसरा नाम अलेक्जेंडर या अलेक्जेंड्रोस था, से कितना मिलता जुलता है,
है ना? और एक और मशहूर दस्तावेज है तावाग्लावा पत्र। इसमें हित्ती राजा और अहियावा के राजा के बीच विलुसा को लेकर तनाव और शिकायतों का जिक्र है।
तनाव मतलब?
ऐसा लगता है कि अहियावा यानी माइसिनियन यूनानी विलुसा के इलाके में दखल अंदाजी कर रहे थे जिससे हित्ती नाराज थे।
तो ये दस्तावेज सीधे ट्रोजन युद्ध का जिक्र तो नहीं करते?
नहीं, सीधे नहीं, लेकिन ये साबित करते हैं कि 13वीं सदी ईसा पूर्व में विलुसा यानी ट्रॉय एक अहम राजनीतिक खिलाड़ी था और माइसिनियन यूनानियों के साथ उसके रिश्ते तनावपूर्ण थे।
ये हमें हेलन के अपहरण से हटकर लड़ाई का एक असली भू राजनीतिक कारण देते हैं, शायद व्यापार मार्ग या प्रभाव क्षेत्र का झगड़ा।
हाँ, ये ज्यादा मुमकिन लगता है। तो अध्याय 6 में क्लाइन इन तीनों धागों, होमर की धुंधली यादें, ट्रॉय के खंडर और हित्ती रिकॉर्ड्स की गवाही को एक साथ पिरोते हैं।
वो फिर से जोर देते हैं कि होमर का 10 साल लंबा युद्ध, लकड़ी का घोड़ा, देवताओं का झगड़ा, ये सब कहानी का हिस्सा है, इतिहास का नहीं। हेलन का अपहरण शायद एक मिथक है।
लेकिन सबूतों का निचोड़ क्या है, वो दोहराते हैं। एक, हिसारलिक नाम की जगह पर कांस्य युग में एक असली बड़ा और मजबूत शहर था। दो, हित्ती दस्तावेज इशारा करते हैं कि इस शहर का नाम शायद विलुसा था जो ट्रॉय से जुड़ा है।
ठीक है।
वही हित्ती दस्तावेज बताते हैं कि माइसिनियन यूनानी अहियावा इस इलाके में सक्रिय थे और अक्सर उनके इरादे दोस्ताना नहीं थे।
पुरातत्व दिखाता है कि ये शहर खासकर ट्रॉय 7A करीब 1200 ईसा पूर्व के आसपास जलाकर तबाह कर दिया गया।
तो कलाइन का आखिरी फैसला क्या है?
कि होमर का महाकाव्य एक सम्मिश्रित स्मृति है। हकीकत में शायद कई छोटी बड़ी झड़पें, हमले और राजनीतिक तनाव रहे होंगे जो कई सालों या दशकों तक चले।
और हो सकता है इनमें से कोई एक हमला जैसे ट्रॉय 7A का विनाश खास तौर पर विनाशकारी रहा हो।
हाँ, और उसी की याद मौखिक परंपरा में बढ़ते बढ़ते एक महाकाव्य बन गई, सच कहानी के ब्यौरों में नहीं बल्कि उस हिंसक और उथल पुथल भरे युग की गूंज में छिपा है।
इस पूरी चर्चा से कुछ बड़े सबक या थीम भी उभरते हैं।
हाँ।
पहला तो यही कि मिथक और इतिहास अक्सर आपस में गुंथे होते हैं।
हाँ, जैसे हमारे यहाँ भी कई लोक कथाएं या वीरों की गाथाएं हैं जिनके पीछे शायद कोई सच्ची घटना रही हो।
ट्रोजन युद्ध दिखाता है कि कैसे एक ऐतिहासिक चिंगारी एक अमर मिथक की आग बन सकती है।
दूसरा अहम सबक है अलग अलग नजरियों और सबूतों को जोड़ने की ताकत। सिर्फ कविता या सिर्फ खुदाई से ये पहेली नहीं सुलझती।
बिल्कुल, जब साहित्य, पुरातत्व और प्राचीन दस्तावेज तीनों मिलते हैं तब जाकर एक ज्यादा साफ तस्वीर उभरती है। ये आज भी किसी भी जटिल मुद्दे को समझने के लिए जरूरी है।
तीसरा, हम वैज्ञानिक खोजबीन के विकास को भी देखते हैं। श्लीमन के जुनून लेकिन थोड़े गैर वैज्ञानिक तरीकों से लेकर कोरफान के सावधानी भरे तकनीक आधारित काम तक।
हाँ, ये दिखाता है कि ज्ञान कैसे धीरे धीरे सबूतों के आधार पर आगे बढ़ता है, पुरानी धारणाएं बदलती हैं।
और फिर है वो ऐतिहासिक गुठली, हिस्टोरिकल कर्नल का विचार, यानी कई अमर कहानियों के दिल में सच्चाई का एक छोटा सा बीज होता है।
हाँ, बाकी कहानी उस बीच के चारों ओर कल्पना और समय के साथ बुनी जाती है। शायद ट्रोजन युद्ध की कहानी भी कांस्य युग के असली संघर्षों की ऐसी ही एक गुठली है।
और हित्ती सबूतों ने तो ट्रॉय को उसके सही ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ में रखा। वो सिर्फ कविता का शहर नहीं था।
हाँ, बल्कि दो बड़ी ताकतों हित्ती और माइसेनियन के बीच फंसा एक अहम मोर्चा था। इसे लड़ाई के लिए प्यार मोहब्बत से ज्यादा ठोस वजह समझ आती हैं, व्यापार मार्ग, कब्जा, दबदबा।
आखिर में क्लाइन हमें इतिहास की अनिश्चितताओं को स्वीकार करना सिखाते हैं। हजारों साल पुराने अतीत के बारे में हम 100% यकीन से सब कुछ नहीं जान सकते।
हमें संभावनाओं और सबसे ज्यादा मुमकिन लगने वाली कहानी के साथ जीना सीखना होता है। लक्ष्य होता है मौजूदा सबूतों के आधार पर सबसे तर्कसंगत तस्वीर बनाना।
किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो इस पूरी बहस को निचोड़ देती हैं। जैसे क्लाइन का कहना है कि हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि क्या ट्रोजन युद्ध ठीक वैसा ही हुआ जैसा होमर ने बताया,
क्योंकि जवाब नहीं है।
हाँ, बल्कि हमें पूछना चाहिए कांस्य युग की कौन सी असली घटनाएं थीं जो इस शानदार कहानी की प्रेरणा बनी।
बिल्कुल, यानी मकसद होमर को सही या गलत साबित करना नहीं, बल्कि ये समझना है कि यादें कैसे बनती हैं, कैसे बदलती हैं और कैसे वो इतिहास से मिथक बन जाती हैं।
ये तो हमारे अपने समाज में भी होता है ना? पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियां कैसे बदल जाती हैं।
हाँ, एक और दमदार बात सैम, जो क्लाइन कहते हैं वो ये कि लंबे समय तक ट्रोजन युद्ध की खोज एक दो पैरों वाली मेज की तरह थी। एक पैर होमर की कविता, दूसरा पुरातत्व।
और ये मेज डगमगाती रहती थी।
बिल्कुल, हित्ती रिकॉर्ड्स की खोज ने इसे वो तीसरा मजबूत पैर दिया जिससे तस्वीर स्थिर हुई और ज्यादा भरोसेमंद बनी।
ये बात हित्ती सबूतों के क्रांतिकारी असर को दिखाती है। उन्होंने हवा हवाई लगने वाली कहानी और मूक खंडरों को एक जीती जागती ऐतिहासिक दुनिया से जोड़ दिया।
और जैसा हमने कहा, कोई एक चमत्कारी सबूत या स्मोकिंग गन नहीं मिला है। ऐसा नहीं कि किसी को अकेली इसकी ढाल मिल गई हो।
हाँ हाँ,
बल्कि ये कई अलग अलग स्वतंत्र सबूतों का एक साथ आना है जो एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। सही जगह पर हिसारलिक विलुसा, सही समय पर 1200 ईसा पूर्व के आसपास, सही तरीके से विनाश, आग, हिंसा और सही लोगों के बीच टकराव का माहौल। अहिया वायु यूनानी बनाम विलुसा ट्रॉय, हित्ती रिकॉर्ड्स के मुताबिक।
यही तो आधुनिक ऐतिहासिक जांच का तरीका है। किसी एक सनसनीखेज खोज पर नहीं, बल्कि कई तरह के सबूतों के आपसी तालमेल पर भरोसा करना।
अब सवाल उठता है कि हजारों साल पुरानी इस कहानी और उसकी खोजबीन से आज हमें क्या लेना देना?
हाँ, ये जरूरी सवाल है।
बहुत कुछ। सबसे पहले तो ये गंभीर सोच और स्रोतों को परखने, क्रिटिकल थिंकिंग एंड सोर्स एनालिसिस का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये किताब सिखाती है कि अलग अलग तरह के सबूतों, कविता, खंडहर, सरकारी दस्तावेज को कैसे देखें, उनके पूर्वाग्रह क्या हो सकते हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं।
ये हुनर तो आज के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले युग में कितना जरूरी है। कोई भी खबर, कोई भी दावा सामने आए तो रुक कर सोचना, ये कहां से आया है, भरोसे लायक है, मकसद क्या हो सकता है।
बिल्कुल, जैसे क्लाइन ने होमर, श्लीमन और हित्ती राजाओं के रिकॉर्ड्स को परखा, वैसे ही हमें आज की सोचनाओं को परखना सीखना होगा।
दूसरा सबक सच और याददाश्त की प्रकृति को समझने से जुड़ा है। कहानी दिखाती है कि सच अक्सर सीधा सा पाठ नहीं होता।
हाँ, कोई कहानी तथ्यों के हिसाब से भले ही पूरी तरह सही ना हो, पर वो किसी संस्कृति या समुदाय के लिए भावनात्मक रूप से या प्रतीकात्मक रूप से सच हो सकती है।
ये हमें अपने समाज की कहानियों, पारिवारिक इतिहास या राष्ट्रीय मिथकों को ज्यादा गहराई से समझने में मदद करता है।
तीसरा, हम वैज्ञानिक प्रक्रिया का सम्मान करना सीखते हैं। श्लीमन के जोशीले लेकिन जल्दबाज तरीकों और बाद के पुरातत्वविदों के धीमे सावधानी भरे काम का फर्क।
हाँ, वो दिखाता है कि ज्ञान कैसे धीरे धीरे बनता और नई जानकारी आने पर पुरानी सोच को बदलने के लिए तैयार रहना पड़ता है।
चौथा, संदर्भ का महत्व। हित्ती रिकॉर्ड्स ने कैसे पूरी कहानी का मतलब बदल दिया।
ये दिखाता है कि किसी भी घटना को उसके बड़े संदर्भ के बिना समझना कितना मुश्किल है।
चाहे ऑफिस की राजनीति हो, देश का इतिहास हो या पड़ोसी से झगड़ा, बड़ी तस्वीर देखे बिना असली वजह समझ नहीं आती। सही कहा। और पांचवा, सबूत और व्याख्या में फर्क करना। क्लाइन हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि क्या सिर्फ कच्चा डेटा है जैसे जली हुई परत, और क्या उस डेटा से निकाली गई कहानी या व्याख्या है।
ये हमें हमेशा सवाल पूछना सिखाता है। सबूत क्या कहता है और ये व्याख्या किसकी है और क्यों।
तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है, शायद यही कि सबसे दिलचस्प जवाब अक्सर सबसे आसान नहीं होते।
हाँ, क्लाइन हमें ट्रोजन युद्ध के लिए कोई हाँ या ना में जवाब नहीं देते, बल्कि वो हमें सबूतों को तौलने, व्याख्या करने और इतिहास लिखने की पूरी प्रक्रिया की एक गहरी समझ देते हैं।
मुख्य बातें फिर से दोहराएं तो, होमर का ट्रोजन युद्ध जैसा लिखा है वैसा शायद नहीं हुआ, वो मिथक है।
दो, पर ये मिथक हवा में नहीं, ऐतिहासिक सच्चाई में जड़ें जमाए हुए हैं। ट्रॉय विलूसा नाम का शहर सच में था और तबाह हुआ।
तीन, हमलावर शायद माइसिनियन यूनानी अहियावा थे,
और ये कहानी शायद कई घटनाओं की मिलीजुली याद है।
इस किताब की खासियत यही है कि ये तीन अलग अलग दुनियाओं, प्राचीन साहित्य, पुरातत्व और हित्ती इतिहास को एक जासूसी कहानी की तरह बुन देती है। ये सिर्फ बताती नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करती है।
और मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो ये कि ये किताब मिथ को छोटा नहीं करती बल्कि उसे और बड़ा बना देती है। ये दिखाती है कि उस अमर कहानी के पीछे की असली दुनिया कितनी पेचीदा और दिलचस्प थी।
हाँ, ये हमें होमर की कल्पना की उड़ान और उन विद्वानों की मेहनत दोनों की कद्र करना सिखाती है।
और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जिस तरह ट्रोजन युद्ध की कहानी वक्त के साथ बदली, कई यादें उसमें घुल मिल गईं, क्या आज हम भी अपने समय की कहानियां, अपने राष्ट्रीय मिथक इसी तरह गढ़ रहे हैं?
क्या हम भी अनजाने में आने वाले कल के इतिहासकारों के लिए अपने आज की सम्मिश्रित स्मृतियां बना रहे हैं?
सोचने वाली बात है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।